তাণ্ডিব রক্ত ধরা মন সংগ্রহ চলা দৃষ্টি বৃষ্টি আছি জিনবত গৃহণ প্রেম ভক্তি সকামে প্রয়ত মুক্তি গ্রহ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
गोपिका सुतः।
यथा भक्ति मतमिह से प्राप्त अथवा सुख का लक्ष्य भगवान
भगवान
देही नाम देहात्म बुद्धि को प्राप्त पुरुषों का विशेष कर्मियों का गोपिका सुतः माता यशोदा का पुत्र कृष्ण वसुदेव पुत्र होने से कृष्ण वासुदेव और यशोदा पुत्र होने से कृष्ण कहलाते हैं। ज्ञानी नाम तथा भगवंदन से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील ज्ञानियों का आत्मभूता नाम आत्मनिर्भर योगियों का यथा जैसे भक्ति मतां भक्तों का यह इस जगत में अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण प्रेमा भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ है, किंतु वे मनोधर्मियों घोर तपों द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वालों अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वालों के लिए सुलभ नहीं होते। तात्पर्य माता यशोदा के पुत्र रूप में कृष्ण भक्तों के लिए सरलता से उपलब्ध होते हैं, किंतु तपस्वियों योगियों ज्ञानियों तथा देहात्म बुद्धि वालों को नहीं यद्यपि इन्हें कभी कभी शांत भक्त कहा जाता है, किंतु असली भक्ति तो दास्य रस से प्रारंभ होती है। भगवद गीता के चौथे 4:11 में कृष्ण कहते हैं, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांस्थे भजाम्यहम्, मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वतः। हे पार्थ, सारे जीव जिस तरह से मेरी शरण में आते हैं मैं उन्हें उसी तरह पुरस्कृत करता हूँ। हर व्यक्ति सभी तरह से मेरे पद का अनुसरण करता है। हर व्यक्ति कृष्ण को खोजता है क्योंकि वे सारे जीवात्माओं के परमात्मा है। हर व्यक्ति को अपना शरीर प्रिय है और वह उसकी रक्षा करना चाहता है क्योंकि वह शरीर के भीतर आत्मा रूप में रहता है और हर व्यक्ति आत्मा से प्रेम करता है क्योंकि यह आत्मा परमात्मा का अंश है। अतएव हर व्यक्ति परमात्मा के साथ अपने संबंध को पुनरुज्जीवित करके सुख की खोज में लगा हुआ है। जैसा कि भगवत गीता 15:15 में भगवान कहते हैं, वेदे सर्वेर अहमे वेद, सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। इसीलिए सारे कर्मी ज्ञानी योगी तथा अंत पुरुष कृष्ण की खोज करते हैं, किंतु कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले भक्तों के शरण चिन्हों का विशिष्ट वृंदावन वासियों का अनुसरण करते हुए मनुष्य कृष्ण के सानिध्य के परम पद तक पहुंच सकता है। जैसा कि कहा गया है, वृंदावनम परितज्जम पाद एकम न गच्छति, कृष्ण वृंदावन को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते। वृंदावन वासी माता यशोदा कृष्ण के मित्र तथा कृष्ण की माधुरी प्रेमिकाएं, वे तरुण गोपियां जिनके साथ वे नाचते हैं, कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले हैं। और यदि कोई व्यक्ति इन भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है तो उसे कृष्ण अवश्य प्राप्त होते हैं। यद्यपि कृष्ण नित्य सिद्ध अंश सदैव यद्यपि कृष्ण के नित्य सिद्ध अंश सदैव कृष्ण के साथ रहते हैं, किंतु यदि साधन सिद्धि में लगे लोग कृष्ण के इन नित्य सिद्ध संगियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं तो वे भी बिना किसी कठिनाई के कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो देहात्म बुद्धि में लिप्त रहते हैं। उदाहरणार्थ भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव को अत्यंत प्रतिष्ठित पद प्राप्त है और इस तरह वे परम पूज्य ईश्वर है। दूसरे शब्दों में भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव गुण अवतार होने तथा उच्च पद प्राप्त होने से अपने को कुछ कुछ कृष्ण जैसा अनुभव करते हैं, किंतु वृंदावन में रहने वाले शुद्ध भक्तों में देहात्म बुद्धि नहीं रहती। वे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति में समर्पित रहते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि प्रेमा कुमार तो महान, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्रेमा अर्थात कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है और माता यशोदा उन सर्वोच्च भक्तों में से है जिन्होंने यह सिद्धि प्राप्त कर ली है। हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में सबसे प्रसिद्ध लीला नटखट माखन चोरी, उसी पर आधारित ये दामोदर लीला जो कि उसी का एक अंश है, यहाँ पे ये प्रसंग चल रहा है। तो प्रसंग के अनुसार यहाँ पे यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया है और इसीलिए उनका नाम दामोदर पड़ा। पिछली बार हम बोले थे कि भगवान के नाम और नाम गुण और कर्म के अनुसार होते हैं, तो यहाँ पे एक नाम और भगवान का पड़ा, क्या? दामोदर। उदर का मतलब पेट होता है और दाम मतलब रस्सी। जिसको रस्सी से जिसके कमर को या पेट को बांध दिया हो उसका नाम है दामोदर। तो यहाँ पे भगवान ने अपना एक नाम दामोदर रखवाया है। तो ये जो श्लोक है यहाँ पे 21वां, इसमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि केवल अगर भगवान कृष्ण को और वो भी जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है उसको अगर कोई प्राप्त करना चाहता है, उसको अगर कोई अपने भक्ति के माध्यम से मानना चाहता है तो उससे क्या करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते उससे वृंदावन के जो शुद्ध प्रेमी भक्त है उनका अनुसरण करना पड़ेगा। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे भक्ति के जो परम उत्कर्ष को इस श्लोक में व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया यथा भक्ति मता में है। यथा भक्ति मतलब यथा मतलब यशोदा ने जैसी भक्ति की मता में है उसी प्रकार से अगर कोई भक्ति करेगा या उनका अनुसरण करेगा तभी भगवान को वो बांध सकता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी उसके वो बता रहे कि जो लोग देहात्म बुद्धि में है ज्ञानी नाम और सात्मभूता नाम, ज्ञानी और जो आत्मभूत आत्मभूत वो कहते हैं जिसको जिन्होंने अपनी शरीर की बुद्धि को त्याग दिया है और आत्मा को जो असली बुद्धि है उसको प्राप्त कर लिया है आत्मभूता नाम। भगवत गीता में इसको भगवान ब्रह्मभूत के नाम से बताते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांसती, तो आत्मभूत की स्थिति को भगवान बता रहे इसमें ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांसती समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभ्यते पराम। तो ये जो आत्मभूत या ब्रह्मभूत स्थिति है ये भक्ति के भक्ति इसके ऊपर से प्रारंभ होती है भगवान बताते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समय सर्वेषु भूतेषु, जब उसकी समदृष्टि हो जाती है, जब तक व्यक्ति के अंदर ये द्वंद्वात्मक बुद्धि होगी भेदभाव होगा अपना और पराये का तब तक उसमें कभी भी समदृष्टि नहीं हो सकती। और जब तक समदृष्टि नहीं है भगवान बताते हैं वो भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभ्यते पराम। अगर किसी को परा भक्ति या दिव्य भक्ति को प्राप्त करना है तो उसे समदृष्टि प्राप्त करनी होगी। तो यहाँ पे समदृष्टि प्राप्त करने के बाद भी इस तरह से कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी का स्वयं का अनुभव है। क्योंकि वो पहले क्या थे जो यहाँ पे वो बता रहे आत्मभूता नाम, वो भी आत्मा राम थे। जब तक उन्होंने भागवत का श्रवण नहीं किया था और भक्ति की महिमा को नहीं जाना था तब तक वो ज्ञानियों के स्तर में थे। इसलिए उनको ये बात का अनुभव है कि केवल आत्मसिद्धि से या ब्रह्मभूत स्थिति से कृष्ण को नहीं प्राप्त किया जा सकता। अगर किसी को कृष्ण को प्राप्त करना है तो उसके ऊपर का स्तर है ये भक्ति। तो आत्मभूत होने से बहुत से जो ज्ञानी है और योगी है वो लोग समझते कि आत्मा की स्थिति को समझ करके हम लोग ईश्वर के समान हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर की जो स्थिति है वो इसके ऊपर से शुरू होती है जब वो शुद्ध भक्ति में भगवान को प्राप्त करना चाहता है। हाँ, उसके अंदर जब आत्मस्थिति को वो प्राप्त कर लेता है तो जो आत्मा की गुण है उसको वो प्राप्त कर सकता है। तो आत्मा की गुण है सच्चिदानंद, वो साक्षात रूप से रह सकता है किसी निराकार ब्रह्म में या और कोई मुक्ति में, ज्ञान को प्राप्त कर सकता है लेकिन कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो इससे ऊपर की स्थिति को प्राप्त करना होगा। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभ्यते पराम। और ये भक्ति उसके बाद प्रारंभ होती है। तो जब तक जीव की स्थिति ये तीनों गुणों में है तब तक वो कृष्ण को नहीं बांध सकता क्योंकि वो स्वयं बंधा हुआ है। यहाँ पे यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा है क्योंकि वो मुक्त है। कृष्ण को वही व्यक्ति बांध सकता है जो मुक्त हो चुका है संसार के तीनों गुणों से, सतरज और तम। उसके बाद जब वो भक्ति करेगा तब कृष्ण को वो बांध सकता है, नहीं तो कृष्ण किसी के बंधन में आने वाले नहीं है। क्योंकि कृष्ण को जो बांध सकती है वो रस्सी केवल है प्रेम की डोरी, झीनी रे प्रेम की डोरी, मोते तोड़ी ना छोड़ी जाए, राधा गोविंद महाराज बताते हैं। मतलब ये प्रेम की डोरी इतनी नाजुक है फिर भी कृष्ण बताते कि इसको मैं ना तो छोड़ सकता और ना तोड़ सकता। तो यशोदा मैया ने उसकी डोरी से कृष्ण को बांध रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आत्मभूतानाम और तपस्वी, इसके लिए सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि वो कभी भी कृष्ण को इस तरह से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और फिर देहात्म बुद्धि, नयम सुखा तो भगवान देही नाम मतलब देह में जिनकी आत्मबुद्धि है वो तो कभी भी उनको समझ भी नहीं सकते, प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात। तो यहाँ पे इस श्लोक में विशेष करके शुद्ध भक्ति का जो उत्कर्ष है इसको सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर कोई शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर ले तभी कृष्ण को इस प्रकार से प्राप्त कर सकता है। और इसके पहले वाले श्लोकों में तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया है कि वो बता रहे नेमम विरंची, मतलब यशोदा मैया ने जिस सुख को प्राप्त किया है या जिस स्थिति को प्राप्त किया है, नेमम विरंची मतलब ब्रह्मा भी उसको प्राप्त नहीं कर पाए और न भव न शिव भी उसको प्राप्त कर पाए और न श्रीअंग लक्ष्मी भी उस कृपा को प्राप्त नहीं कर पाई। तो अगर तपस्वियों और अन्य योग जो योगी है ज्ञानी है उनको प्राप्त होते तो शिव और ब्रह्मा और श्री के समान तपस्वी योगी और ज्ञानी कौन हो सकते हैं। और ये बताते कि भगवान के ही अंश है ब्रह्मा शिव और लक्ष्मी, ये भी उस कृपा को प्राप्त नहीं कर पाए जो यशोदा मैया ने प्राप्त की है। इसलिए दूसरी लाइन में वो बताते हैं प्रसादम ले भी रे गोपी, प्रसाद यानी जिस कृपा को, ले भी रे मतलब लाभ किया, जिस कृपा को गोपी ने लाभ किया वो न मम विरंची न भव और न श्री अंग, ये लोग भी उसको प्राप्त नहीं कर पाए। फिर साधारण व्यक्ति के लिए तो बोला ही किया जा सकता है। तो ये और ऐसी स्थिति प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे केवल अगर किसी को कृष्ण को बांधना है तो उसको वृंदावन के जो प्रेमी भक्त है उनका अनुसरण करना होगा। जब तक वो अनुसरण नहीं करेगा तब तक चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, आत्मभूत हो या ब्रह्मभूत हो, वो कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग देख रहे जब भी भगवान शिव जब रात में प्रवेश करना चाहते हैं रासलीला में तो उन्हें गोपी भाव को धारण करना होता है। इस प्रकार से ईश्वरत्व भाव को प्राप्त करके कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको गोपियों का अनुसरण करना पड़ता है। और श्री यानी लक्ष्मी जी भी जब रात में प्रवेश करना चाहती है तो उन्हें आज भी वो प्रवेश नहीं दिया गया है। इसलिए जो लोग वृंदावन गए ब्रजमंडल गए वो देखे होंगे कि बेलवन में आज भी लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है, क्यों? गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब तक वो गोपियों का अनुसरण नहीं करेगी तब तक उसको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मी जी को सारे वैभव और ऐश्वर्य का थोड़ा अभिमान है और उसी अभिमान को दूर करने के लिए कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने प्रेमी भक्तों का अनुसरण करवाना चाहते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, योगी हो या आत्मभूत हो, जब तक वो शुद्ध भक्त जो कि वृंदावन के यशोदा मैया है, नंद बाबा है, गोप गोपी है, ग्वाल वाल है, ये जो पांच प्रकार के रस है उसमें शांत को तो, शांत भक्तों को तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये ज्ञानी और योगियों के लिए लागू होता है, लेकिन जो सुख भक्ति है वो दास्य भाव से शुरू होती है। जो चार रस है जिसमें कृष्ण को सखा के रूप में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं या दास के रूप में अपने आप को, कृष्ण के दास के रूप में अपने आप को स्थित कर सकते हैं, या तो वात्सल्य भाव में या फिर माधुर्य में, तो ये सब स्थितियां जब ही प्राप्त हो सकती है जब ऐसे जो भक्त है उनका हम लोग अनुसरण करें, अपने बल से या ज्ञान से या तप से नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसी भक्ति के उत्कर्ष को यहाँ पे बताते हुए सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को बता रहे हैं, क्योंकि पहले वाले अध्याय के जो है अंत में परीक्षित महाराज पूछते हैं, जब भी भगवान कृष्ण यशोदा मैया का स्तनपान कर पान कर रहे हैं तो उनको ये आश्चर्य हो रहा था कि देवकी मैया के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया लेकिन उन्हें भी वो लाभ प्राप्त नहीं हुआ जो यशोदा को प्राप्त हुआ। क्या तप इन्होंने किया था, कौन सी भक्ति की थी जिसके कारण स्वयं ब्रजेंद्र नंदन उनका स्तनपान कर रहे हैं। तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी इसी बात का निराकरण करते हुए बताते हैं कि ये पिछले जन्म में कौन थे, सुतपावर, ये द्रोण और धरा थे, और इन्होंने देवताओं की 12,000 वर्ष तक तपस्या की थी। तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की तब जाके उनको नंद और यशोदा का पद प्राप्त हुआ। यद्यपि यहां पे बताया जा रहा है कि तप के द्वारा कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये जो नंद और धरा थे वो नंद, ये द्रोण और धरा थे वो नंद और यशोदा के अंश थे, और इन्होंने किसी कारणवश या इस प्रकार से जो है द्रोण और धरा के रूप में प्रकट होकर के तप किया था, क्योंकि तो तप के द्वारा तो कोई यशोदा और नंद का पद प्राप्त कर ही नहीं सकता, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन ये उन्हीं के अंश थे और उन्होंने इस प्रकार से जन्म ग्रहण किया, तो भगवान ने इनको उसी नंद और धरा जो मूल रूप से गोलोक में है उनमें इन्होंने प्रवेश किया और इस लीला का आस्वादन किया। तो यहाँ पे उसी उन्हीं का अनुसरण करने के लिए नंद और ये द्रोण और धरा तपस्या करते हैं। तो इस तरह से जो है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि नंद और यशोदा या ब्रज के जो भक्त है उनका अनुसरण किए बगैर भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अन्य जो भगवान के अंश है या अन्य भगवान के जो नारायण रूप है या नरसिंह है, बावन है, इनको भले ही ऐश्वर्य भाव से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से जो ब्रजेंद्र नंदन है उसको केवल ब्रज के जो शुद्ध भक्त है उन्हीं का अनुसरण करके प्राप्त किया जा सकता है। तो भक्ति का उत्कर्ष यहाँ पे बताया जा रहा है, जब तक प्रेमा भक्ति या ऐसे भक्तों का अनुसरण नहीं होगा तब तक कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसलिए यहाँ पे इसी भक्ति को दर्शाते हुए बीच में 19वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते एवं संघर्षिता, परीक्षित महाराज का कुछ शंका था कि ये भगवान इस प्रकार से जो है इतने जो है शक्तिशाली है तो क्यों ये यशोदा के बंधन में आए। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी उसी का निराकरण करते हुए बताते हैं एवं संदर्शिता, ये जगत को संदर्शित यानी पूर्ण रूप से दिखाने के लिए एवं संदर्शित ही अंगे हरिणा भृत वत्सला कि मैं कितना भृत वत्सल हूँ, अपने भक्तों पर कृपा कर कितना कृपा करता हूँ मैं, किसी को यहाँ पे सुखदेव वसन वत्सल एवं संदर्शित इसी को दर्शाने के लिए कि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से शुद्ध भक्तों का अनुसरण कर सकता है तो मुझे वो भी प्रेम की रस्सी से बांध सकता है। तो यहाँ पे इन श्लोकों में भक्ति का चरम उत्कर्ष दिखाया जा रहा है। इसलिए योगी ज्ञानी और आत्मभूतों को यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी का ये अनुभव है वो बता रहे कि इसके द्वारा कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर प्राप्त करना है तो प्रेमा भक्ति और भगवत के संतों का अनुसरण करना होगा, नहीं तो शिव और लक्ष्मी जी भी उनको प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी को स्वयं बताते हैं कि मुझे जितना प्रिय ब्रज के भक्त है उतना ना तो जो है शिव है, ना ब्रह्मा है, ना लक्ष्मी है, और स्वयं बताते हैं कि मेरी आत्मा भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है जितने ये ब्रज के भक्त मुझे प्रिय है। ये 11वें स्कंद में उद्धव जी को बता रहे हैं भगवान। तो स्वयं भगवान भी अपने आप को इतना प्रिय नहीं है बता रहे हैं उसमें जितने ब्रज के भक्त। इसीलिए ये जो प्रेम की डोरी है इसी के द्वारा भगवान को बांध सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे भक्ति के चरम उत्कर्ष को दिखा रहे हैं इन श्लोकों में इस प्रसंग के द्वारा। तो इसी प्रसंग को लेकर के ये दामोदर लीला का जो प्रार्थना हम लोग प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में प्रारंभ किया इसको बोलते हैं दामोदर अष्टक, इसमें इसी लीला को दर्शाया गया है कि भक्ति बद्धम यानी भक्ति के द्वारा ही भगवान को बांधा जा सकता है। तो दामोदर मास में हम लोग इस्कॉन में सभी मंदिरों में ये कथा ये जो प्रार्थना है इसको गाई जाती है क्योंकि हम लोग महाप्रभु के अनुगामी है गौड़ीय संप्रदाय में। तो उसमें जो ये परंपरा चली आ रही है उन्हीं का अनुसरण करने से हम लोग उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो महामंत्र है ये उन्हीं गोपियों का अनुसरण करने के लिए एक प्रार्थना है जिसको हम लोग हमेशा गाते हैं और जप करते हैं। ये महामंत्र जो है स्वयं कृष्ण का अवतार कलयुग में बताया गया है। जब ये महामंत्र में कोई सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वो समझ लो जैसे यशोदा ने कृष्ण को प्राप्त किया है वैसे वो भी कृष्ण नाम को जब शुद्ध रूप से जप करेगा और शुद्ध नाम को वो प्राप्त कर लेगा तो वो भी कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर सकता है। प्रभुपाद जी ने ये किया था और इसीलिए वो सारे विश्व में इसका प्रचार कर पाए। तो यशोदा मैया ने जैसे प्रयास करके कृष्ण को बांधा था और कृष्ण ने कृपा करके उनके बंधन को स्वीकार किया था, इसी प्रकार से अगर कोई भी भक्त इस प्रकार से प्रयास करेगा जैसे प्रभुपाद जी ने कितना प्रयास किया हम लोग देखते हैं उनकी लीलामृत को पढ़ करके प्रचार करने के लिए उनके नाम के प्रचार करने के लिए बहुत प्रयास किया था। तो कृष्ण ये प्रयास को देखते हैं और ये प्रयास किया तो फिर प्रभुपाद जी जैसे यशोदा मैया पर कृपा किए थे प्रभुपाद जी पर भी कृपा की और उन्होंने उनको ऐसा यश दिया कि सारे विश्व में प्रभुपाद जी को हर व्यक्ति हर समय उनकी पूजा होती रहती है क्योंकि उन्होंने शुद्ध नाम को ग्रहण कर लिया था और प्रेम से कृष्ण को अपने वश में कर लिया था। इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को कृष्ण को दे सकते हैं। तो इसी शक्ति के कारण प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में नाम का प्रचार किया क्योंकि उन्होंने जो गोपियों के पद चिन्हों पर चल करके महाजनो येन गता से पंथ उसी पद पर चल करके कृष्ण नाम को ग्रहण किया और हर व्यक्ति को इसको देने के लिए उन्होंने मुक्त रीति से जो है इसका वितरण किया। और कृष्ण भी बहुत अच्छी तरीके से उसके लिए राजी हो गए। तो ये प्रेम के बंधन से इस प्रकार से कृष्ण अपने आप को भक्तों को आत्मदान करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं कि ये यथा माम प्रपद बनते सांस थे भजाम, जो जिस प्रकार से भगवान को भजता है भगवान भी उसी पात्र में उसको दान करते हैं। तो भगवान आज भी बनना चाहते हैं लेकिन व्यक्ति की योग्यता होने की, जो योग्य व्यक्ति है वो अभी भी और इस वक्त भी कृष्ण को बन सकते हैं। तो जिनको योग्य बनना है कृष्ण उनके साथ बनने को तैयार रहते हैं। तो अब ये हमारे ऊपर होता है कि हम बनना चाहते हैं या नहीं। तो वो बनेंगे ये शुद्ध नाम के द्वारा, जब अपराध रहित होकर के किसी की जीवा पर ये नाम उच्चारित होगा तभी कृष्ण को वो बांध सकता है इस युग में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।